Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Siddham Suddham Panamiya Jinindavarane Michandamakalankam. Gunarayana Bhusanudayam Jivasa Paruvanam Ocham. Acharya Kalp Pandit Todarmal Ji likhit. Yeh Samyak Gyan Chandrika Jeev Kand hai. Uska jo samanya prakaran hai, Pitika jisko kehte hai. Usme bhi hum prishtha sankhya 7 par aa gaye hai. करणान योग का अभ्यास करने के लिए जीवों को वहां उससे सन्मुख करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। जिन लोगों का अन्य अन्य योग संबंधी जो पक्षपात है और करणान योग का जो निषेध करते हैं, उनका अभ्यास करने के प्रति जीवों को उल्टा यानी उससे दूर रखते हैं, तो उनके लिए यहाँ ये चर्चा चल रही है। यहाँ पूछा गया था करणान योग के पक्षपाती ने कि कुछ व्रत तप करेंगे, उपवास करेंगे, अरिहंत आदि पूजा नामस्मरण भक्ति आदि करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, तो खाली इसको पढ़ने से क्या होगा? तो करणान योग का अभ्यास भी, ये तो ज्ञानाभ्यास है, इससे तो सातिशय पुण्य का बंध होता है। जैसे व्रतादि भी शुभ राग है, वैसे इसका अभ्यास ये तो और उच्च प्रकार का शुभ राग है। यानी शुभ राग ही उसी में यानी अशुभ टालकर शुभ में रहना चाहते हैं, तो इससे और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। बढ़िया, एक बात। दूसरी बात है कि जीव समास आदि विस्तार से जाने बिना मात्र कोई क्रिया करने से वो शुभ राग भी ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं पलेगा। परंतु जब जानेंगे कहाँ कितने जीव होते हैं, कौन से जीवों की कैसी हिंसा हो सकती है, और जानकर अगर उसको टालेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो व्रत पालने में ज्ञानाभ्यास मुख्य, ये बात बता दी। ऊपर क्या क्या बात उसने की थी कि व्रत का पालन किया जाए, उपवास आदि तप किया जाए। अब तप के बारे में बोल रहे हैं। पहले व्रतों के बारे में, जो व्रत करने के लिए चरणान योग का पक्षपाती कह रहा था, उसके लिए तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि व्रत पालने में भी ज्ञानाभ्यास की प्रधानता है। अब दूसरा पॉइंट, उपवास आदि तप करना चाहिए, उसके लिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं। पुनश्च तप दो प्रकार के हैं। अभी अभी अपना ये विषय चला है ना, बहुत विस्तार से कार्तिकेय अनुपरीक्षा में हमने विस्तार से देखे थे इसके। एक बहिरंग, एक अंतरंग, यानी दो प्रकार है वो, एक अंतरंग और एक बहिरंग। वैसे 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग हो गए। वहां जिससे शरीर का दमन हो, दमन हो यानी शरीर कृश किया जाए, उसमें उसके प्रति जो हम रुचि पूर्वक शरीर का पालन पोषण करते हैं, उसको खिलाते पिलाते रहते हैं और दष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, तो जिससे शरीर का दमन हो वह बहिरंग तप है। बहिरंग की बात है ना, बहिरंग तपों के नाम याद है क्या? हाँ, अमूल नहीं है, थोड़ा भूल गए ना, स्टार्ट कर दे। हाँ बोलो सौभाग में। हाँ, अनशन, अवमौदर्य, उनोदर। हाँ, फिर आगे वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, हाँ, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। तो यहाँ क्या होता है, शरीर का दमन होता है, वह बहिरंग तप है।
ये शरीर का दमन का अर्थ शरीर का लाड़ प्यार कम हो जाता है।
हाँ।
हम जो शरीर को पंपालते हैं ना, तो वहाँ वो कम हो जाता है।
ये जो खाने पीने के प्रति क्रुद्धता है ये कम हो जाती ना उसमें, ये सारे जो हमने देखे थे। और जिससे मन का दमन हो वह अंतरंग तप है। देखो टोडरमल जी ने क्या बहुत आसानी से उसको बता दिया, जिसमें शरीर का दमन हो वह बहिरंग तप है, और जिससे मन यानी वो उसकी दृढ़ता बढ़ती है ना तो वो अंतरंग तप है। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है, यानी उपवास आदि करने के बदले अंतरंग तप कौन कौन से है? हाँ, अंतरंग तप, सांस ले लो पहले, सांस, हाँ तब तक दूसरे बताएंगे। हाँ, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, फिर स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। तो बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है कंपेरेटिवली। उपवास आदि तो बहिरंग तप है, अभी हमने गिना है ना, उपवास है, अवमौदर्य है वगैरह। ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है, ये स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये ध्यान तो ज्ञान के बिना तो नहीं होगा, ये विसर्ग आदि जो बातें हैं तो उसमें भी ज्ञानाभ्यास की मुख्यता है। सिद्धांत में भी छह प्रकार के सिद्धांत किसको कहते हैं? जिनागम को सिद्धांत कहते हैं, आगम को सिद्धांत कहेंगे। तो सिद्धांत में भी छह प्रकार के अंतरंग तपों में चौथा स्वाध्याय नामक तप कहा है। अभी हमने गिना है ना छह, उसमें चौथा नंबर स्वाध्याय का लिया था। उससे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। ये जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और स्वाध्याय आदि जो कहे तो क्रम से आगे आगे वाले उत्कृष्ट है। इसलिए तप करने में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। और जब ज्ञान ही नहीं होगा, स्वाध्याय ही नहीं होगा तो आगे के होंगे भी नहीं। भले वो उत्कृष्ट है इससे, परंतु इसके बिना भी वो नहीं होंगे। पुनश्च जीवादि के विशेष रूप गुणस्थानादिकों का स्वरूप जानने पर ही, क्या कहते हैं? जीवादि के विशेष रूप, जीवों के विशेष यानी जीवों के पर्यायों की जो बातें हैं, तो ये जो 14 गुणस्थान है और प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप हम जानते हैं, तो कौन से गुणस्थान का स्वरूप क्या है? तो मुनियों के कौन से गुणस्थान है, मुनियों का क्या स्वरूप है, अरहंत को कौन सा गुणस्थान होता है, उनका क्या स्वरूप है, आदि बातें हम विस्तार से जान सकते हैं। तो कहते हैं कि जीवादि के विशेष रूप गुणस्थानादिकों का स्वरूप जानने पर ही अरहंतादिकों का स्वरूप यथार्थ रीति से पहचाना जाता है। क्योंकि तप के बाद उसने बात किसकी उठाई थी? चरणानुयोग के पक्षपाती ने, देख लो, देख कर बताओ मुझे। पहले बताया था व्रत करने चाहिए, दूसरी बात बताई थी उपवास आदि तप करने चाहिए, उसके बाद क्या बताया था? उसी 7 नंबर के प्रश्न पर ही है। हाँ देखो, चरणानुयोग का पक्षपाती में लिखा है 4th लाइन में, तप के बाद अरहंत आदि की पूजा, नाम स्मरण आदि भक्ति की जाए। तो अरिहंत की पूजा तो कर रहे हैं, अरिहंत सिद्ध ओम नमः सिद्धे भी आदि नाम तो ले रहे हैं, परंतु उनका स्वरूप नहीं जानते हैं। तो जैसा फल चाहिए वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका स्वरूप भाषित नहीं हो रहा है, उनके गुण क्या है उसका पता नहीं है, और बस अरिहंत 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 करेंगे तो क्या हुआ? हम अपने बच्चे का नाम भी अरिहंत रख सकते हैं, ये दुकान का भी अरिहंत नाम रखते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे। तो उसका नाम लेने से थोड़ी कुछ हुआ। अरहंत जो पद है उसका विशेष, उसके जो डिटेल्स हम कैसे जानेंगे? गुणस्थान आदि, गुणस्थान है, मार्गणा है, सभी मार्गणाओं में उनका स्वरूप विस्तार से हमने जाना है, तो उनको पहचाना जाता है। तथा
एक मिनट,
हाँ
ये जस्ट आपको मजा की बात बोलता हूँ, अगर हमें सच्चे देव का स्वरूप नहीं पता है तो हम दुकान का नाम लिखते हैं दिगंबर वस्त्र भंडार।
दिगंबर का अर्थ क्या है अमोल? दिशा ही है जिसके वस्त्र, दिग अंबर, दिक यानी दिशा, दिशा ही जिसके वस्त्र है यानी जो नग्न अवस्था, उसको कहेंगे दिगंबर। और वस्त्र भंडार का नाम क्या लिखा?
ये हम देखे, ये नाम देखे बहुत ऐसा है।
जीवादिक के विशेष रूप, और जीवादिक में जीव और कर्म भी ले सकते हैं, और गुणस्थान आदि में क्या लेना, गुणस्थान है, मार्गनास्थान है, और उसके जो कर्मों के जो विशेष विस्तार है, उनकी जो पर्याय है, कहाँ कैसे बंद होते हैं, उदय होता है, ये सब जानने पर कौन से गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का बंद होगा, कहाँ क्या होता है, तो अरिहंत का स्वरूप क्या है वो निश्चित ख्याल में आ जाएगा। क्योंकि जितना हम विस्तार से जानेंगे उतना बिल्कुल हाथ में रखे हुए आंवले के समान जिसको कहते हैं, इतना स्पष्ट प्रतिभासित होता है पूरा ही मोक्ष मार्ग, कहो मुनि का स्वरूप कहो, अरिहंतों का स्वरूप कहो, इतना ही नहीं अपना स्वरूप। यहाँ क्या लिखते हैं कि जीवादिक के विशेष रूप गुणस्थानादिकों का स्वरूप जानने पर ही लगाया, यानी बिना जाने उसका स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, तो जानने पर ही अरहंतादिकों का, अरिहंतादिक यानी अरिहंत भगवान है, सिद्ध है और नीचे के साधु है, उनका भी स्वरूप यथार्थ रीति से पहचाना जाता है तथा अपनी अवस्था पहचानी जाती है। गुणस्थानों का स्वरूप जान लेते हैं तो हम कहां पर अभी है वर्तमान में, ये अपनी अवस्था भी ख्याल में आती है। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग तीव्र भक्ति प्रकट होती है वही बहुत कार्यकारी है। देखो, पहचान के बिना ऐसी तीव्र भक्ति नहीं हो सकती। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता के फोटो लगे हैं या बुजुर्गों के फोटो लगे हैं और हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह से, उनके गुण हमें पता है, तो ये याद आते हैं उनको फोटो देखते ही, तो हमें बहुत भक्ति या उनके प्रति बहुत बहुमान आता है, आदर आता है, प्रेम आता है। परंतु क्या हमारे कोई अन्य मित्र घर में आते वो भी वो फोटो देखते, उनको भी उतना ही प्रेम आएगा उनके प्रति? अरे उनके तो हाँ, ये हाथ जोड़ रहे हैं, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं।
उनकी तो बात छोड़ो, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पिताजी अगर स्वर्गवासी हुए हो तो उनकी फोटो, उनके पिताजी के फोटो, उनके पिताजी के फोटो, ऐसे चार पांच आगे के पिताजी सबके फोटो लगते थे। और हमें तो बहुमान आता है अपने पिताजी का और अधिक से अधिक अपने ग्रैंड फादर का। उसके पहले को देखा ही नहीं तो उसको, अरे वो तो बहुत अमीर थे, अरे अमीर थे, अमीर थे तो क्या हुआ, बहुमान नहीं आएगा। यानी हमारी अरिहंतादि की जो पहचान यथार्थतया हो जाए तो भक्ति करनी नहीं पड़ती, हो जाती है।
वही बहुत कार्यकारी है, यानी वह जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति होगी, क्योंकि स्वरूप जानकर उनके प्रति हमें बहुमान आ रहा है, बहुत उनके प्रति हमें रुचि और प्यार जग रहा है, तो वही सच्ची भक्ति हो जाएगी। मात्र नाम लेने से कुछ नहीं है। देखो, हमने वो कारण कार्य पुस्तक में भी मैंने ये बात लिखी है, हमारे यहाँ एक आए थे बुजुर्ग 87 ईयर्स के, 87 वर्ष के, और पुस्तक पढ़कर आए थे, जैन तत्व परिचय पुस्तक उनके हाथ में लगी थी, तो वो आए थे, कहीं नासिक से आए थे यहाँ पर खास मिलने के लिए। तो कहते थे कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मैं अभी इतना बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे किसी ने ऐसा बताया था कि मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दिला दूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुनियों को दिला दिया है। कोई किसी को देता है कि नहीं देते? पर ये महाभाग ऐसे निकले कि वो, मैंने बहुतों को दिया है, मैं आपको भी दे दूंगा, तो ऐसा किसका मन नहीं ललचाएगा। तो उन्होंने उनको एक ट्रिक बताई कि रोज सुबह उठना और बिल्कुल आसन बराबर लगा के पौना घंटा, क्योंकि अंतर्मुर्त दो घड़ी तक सिद्धों का नाम लेना। तो कहे मैं गए 4 साल से रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और ऐसे ही पौना घंटा ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या माला जपता हूँ कितने लगातार, परंतु मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मेरी क्या गलती है या मेरे कहाँ अभी और क्या करना बाकी रह गया है? मैंने बोला, ओम नमः सिद्धेव्या कहते तो हो, सिद्धों का स्वरूप जानते हो। तो उन्होंने कहा, उनकी क्या जरूरत है? इन्हें बेचारे भोले तो बहुत है, क्योंकि सच्ची दिल से चाहते तो थे मगर मार्ग हाथ में, और ये ऐसे ना भूल भुलैया में कहीं किसी के उपदेश में आकर, चक्कर में आकर, ये तो इच्छा होते हुए भी मार्ग सही नहीं मिलता, दुख तो अंदर हो रहा है कि मुझे सही मार्ग नहीं मिला है, ये भी बात जानते हैं। क्योंकि जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई सच्ची बात मुझे जानने को मिलेगी। वो सुनते कम थे, इसलिए हमारी ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम थी ना, ये माइक वगैरह लगा के हमने उनके साथ चर्चा की थी, 2 घंटे चर्चा की, 1.5 घंटे, और वो सारा रिकॉर्डेड है अपने पास। बहुत प्रश्न थे, क्योंकि ऐसे भोले हैं ना, हम तो जय नहीं, हमको अनंतानुबंधी है ही नहीं, ऐसे कहते हैं। हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हमें तो ये सारी लब्धियां है ही, ऐसा कहते हैं। चलो, यही बात कहते हैं कि उनकी सच्ची अगर वो प्रतीति कब होगी, जब उनका स्वरूप जानेंगे। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग तीव्र भक्ति प्रकट होती है, वही बहुत कार्यकारी है। तथा जो कुलक्रमादिक से भक्ति होती है, ये कुलक्रम क्या होता है? कुल यानी अपने फैमिली में जो चली आ रही प्रथा। क्यों, हम जैनी है तो हमारे फैमिली में तो अरिहंत सिद्धों की पूजा की जाती है, और कोई हमारे हिंदू भाई भगिनी है वो क्या करते हैं, वो उनके अपने जो देव देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उनमें और हमारे में क्या अंतर हुआ? आप कहेंगे हम सच्चे देव की भक्ति कर रहे हैं और वो उनकी मान्यता के अनुसार उन देवों की भक्ति कर रहे हैं, तो हम अच्छे हैं कि नहीं? नहीं। हम भी यदि स्वरूप बिना जाने उनकी भक्ति करते हैं, और वो भी अपने कुल क्रम से भक्ति कर रहे हैं, वो भी फैमिली में जो प्रथा चल रही आ रही रूढ़ी चे उसको वो भक्ति करते देव मानकर, और हम जैनी होते हुए भी, क्योंकि हम सच्चे दिगंबर पंथ में जन्म हुआ है और बचपन से हमने उन्हीं देवों को भजा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सच्चे देव को मान रहे हैं। कुलक्रम से यदि भक्ति करते तो उसको, यहाँ तो बिना जाने फैमिली में है अगर करते तो उसको गृहित मिथ्या तो कहा है। सच्चे देव की भक्ति करते हुए भी यदि उसका स्वरूप नहीं जानते हैं, क्यों करना? परीक्षा में पास होना है, हमारी कोई कोर्ट में केस चल रही है तो भगवान हमारा भला कर दे इसलिए उनकी पूजा करते हैं, तो ये तो गृहित मिथ्या तो है कहते हैं। तो कुलक्रमादिक से भक्ति होती है वह किंचित मात्र फल की दाता है। क्यों किंचित मात्र? अरे यहाँ तो मिथ्या तो पड़ा है और थोड़ा सा कहीं शुभभाव हो गया तो किंचित मात्र फल मिलता है, इसलिए भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। पहले कहा था व्रतों में भी ज्ञानाभ्यास प्रधान है, तप में भी 4th स्वाध्याय नाम का तप है वहां भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। अब यहाँ अरिहंतादि के भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है, क्योंकि ज्ञान से ही उनका स्वरूप ख्याल में आता है तभी सच्ची भक्ति होती है। अब भक्ति के बाद किसका नंबर है देख लो फिर?
दान।
हाँ दान, अब दान की बात करेंगे। देखो टोडरमल जी बिल्कुल मेथोडिकली जाते हैं, जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट किया है, जो विधान किया है, उसी के एक एक शब्द को लेते हुए उसको समझा रहे हैं। क्योंकि कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे ना, ऐसा कहने वाले बहुत सारे हैं, और करने वालों की हिम्मतता दिखती है, बाह्य में भी समाज में भी ऐसे लगता है ये सारा कर रहे और ये तो कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सम्यक दृष्टि का भी, 4th गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि का नाम क्या है? 4th गुणस्थान वाले का अविरत सम्यक दृष्टि, उसके कोई व्रत वगैरह नहीं है फिर भी उसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसी के आनंद की भक्ति सच्ची होगी। और जो मिथ्या दृष्टि है, बहुत गाने बजाने के साथ भक्ति कर रहे है, ऐसा उपवास आदि कर रहे है, तो लोगों को तो बाह्य में ही उसके जो व्रत है, बाह्य में जो कोई उसके बहिरंग में तप करता हो, उपवास आदि करता हो, बाह्य में कोई अन्य भी वेश धारण किया हो, उसी की महति लगती है। अब दान की बात करेंगे। पुनश्च दान 4 प्रकार का है, उनमें आहार दान, औषध दान, अभय दान। तो तात्कालिक है ना, फॉर द टाइम बींग, तात्कालिक है ना, उस टेम्पररी, उस समय के लिए क्षुधा के दुख को। अभी आहार दान को पहला लिया ना, तो आहार दान एक बार क्षुधा के दुख को, आगे लास्ट में उसका सेंटेंस क्या है या क्रियापद, दूर करते हैं। ये तीनों की बातें 3 में बताई है, तो क्रम क्रम से लगाना। पूरा वाक्य पढ़ रहे थे पहले, क्षुधा के दुख को, रोग के दुख को और मरणादि के भय के दुख को ही दूर करते हैं। तो जो आहार दान किसको दुख करता है? तात्कालिक क्षुधा के दुख को दूर करता है। औषध दान तात्कालिक रोगों को दुख करते हैं, क्योंकि एक बार औषधि दी पूरे लाइफ टाइम तक के रोग दूर नहीं होते, उस समय का जो कोई है, और वो भी गारंटी नहीं है कि दूर होगा। और अभय दान किसको दूर करता है? मरण को, हाँ मरने के भय को दूर करता है। और ज्ञान दान है वह, ये चौथा ज्ञान दान है, अनंत भव संतान संबंधी दुख दूर करने का कारण है। अनंत भव संतान, संतान का अर्थ क्या होता है? ये पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, इसको संतति कहते हैं, संतान। ये किसकी यहाँ कौन सी बातें, एक भव, उसका दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, पांचवा भव, भव के बाद जो भव आते रहेंगे तो उसको कहेंगे भव संतान। कितने? एक दो चार नहीं, अनंत। तो अनंत भव संतान संबंधी दुख दूर करने का कारण है। क्यों दुख क्यों दूर कर होगा? जो हमने अनंत भव भोगे उसका दुख दूर होगा? ये भव भ्रमण मिट जाएगा यदि इसको नहीं जानेंगे तो। अनंत काल ऐसे ही और भी हम जन्म मरण करते रहेंगे, तो उससे छूटने का उपाय हमें ये ज्ञान से ही मिलेगा। तो उसमें भी ये ज्ञान दान ही श्रेष्ठ है। दान में भी बता रहे, ये तो स्वयं जानने की बात नहीं, अभी ज्ञान दान में तो औरों को पढ़ाना आदि बातें आती हैं। तीर्थंकर केवली आचार्य आदि को के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति है। तीर्थं अभी यहाँ दान देने में इच्छा से मैं अभी किसी को दे दूं ये बात नहीं होती, ये तो सहज रूप से ऐसा होता है। तीर्थंकरों के भी जो वाणी छूटती है, पूर्व अवस्था में नीचे के गुणस्थानों में ऐसे शुभ भाव हुए थे कि ये बात सब लोग समझ जाए, तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था। अब तीर्थंकर होने पर, केवल ज्ञानी होने पर उनकी दिव्य ध्वनि छूटती है सहज रूप से। तो कहते उनके भी ज्ञान दान है, केवली भगवान के भी, अन्य जो केवली है वो भी उपदेश देने वाले होते उनमें से कई, भले उनके समोचरण नहीं लगता है परंतु गंधकुटी आदि की रचना होती है, उनकी भी ओमकार दिव्य ध्वनि छूटती है। और आचार्यादिक, आचार्य उपाध्याय अन्य साधु के भी होती है, और भी ज्ञानी जो पांचवे चौथे गुणस्थान वाले भी उसमें ले लेना, तो उनमें मुख्यता तो आचार्यों को, मुनियों को लिया मुख्यता से, ज्ञान दान की प्रवृत्ति है। इसलिए ज्ञान दान उत्कृष्ट है, सो स्वयं का ज्ञानाभ्यास हो जाए तो अपना भला कर लेता है और अन्य जीवों को ज्ञान दान देता है, क्योंकि ज्ञानाभ्यास से तो स्वयं का भला होता ही होता है। और जिसको ये सच्चा ज्ञान मिल जाए उसको सहज रूप से ऐसा भाव आता है कि मैं ये सबको दे दूं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं करने पड़ते उसके अपने आप पर या औरों पर, ये सहज ऐसे उसके परिणाम हो ही जाते हैं। ज्ञानाभ्यास बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? जो स्वयं नहीं पढ़ेगा तो औरों को कैसे पढ़ा सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। देखो पहले पैराग्राफ में क्या लिखा था ऊपर, भक्ति में ज्ञानाभ्यास प्रधान है, उसके पहले पैराग्राफ में तप में, पहले पैराग्राफ नहीं वहां बदला उन्होंने, आठ पेज पर ही, इसलिए तप करने में ज्ञानाभ्यास प्रधान है लिखा था सेकंड लाइन में, फर्स्ट और सेकंड लाइन में। और उसके पहले व्रत के पैराग्राफ में भी लिखा था व्रत पालने में ज्ञानाभ्यास ही प्रधानता है। अब आगे पढ़ेंगे, पुनश्च जिस प्रकार, ये दान के बाद किसको किसका नंबर आया है? विषयादि से उदासीन हो जाए, अब उसके लिए यहाँ कोई दृष्टांत दे रहे हैं। जिस प्रकार जन्म से ही कितने ही पुरुष ठगों के घर गए, वहां उन ठगों को अपना मानते हैं, कि ठग यानी वो लुटेरे, चोर, डाकू, किसी ने किसी के बच्चे को उठा लिया और उनके घर में वो बड़ा होने लगा, तो क्या मानता है? ये ठगी मेरे अपने हैं। उनमें से कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान होने से, किसी निमित्त से ऐसे कोई प्रसंग बना कि उसको समझ में आया कि ये मेरा कुल और था और ये सारे है वो ठग है, तो ज्ञान होने से, यथार्थ ज्ञान होने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हुआ, अभी उनको उनके प्रति कोई लगाव नहीं रहा। पहले तो अपना मानता था, अब उसको ख्याल में आया लेकिन ये मेरे अपने कोई है ही नहीं है, तो उनके प्रति वो उदासीन हुआ। उनको पर जानकर संबंध छुड़ाना चाहता है। ख्याल में कितना यथार्थ उन्होंने दृष्टांत भी कैसा दिया, अभी उन्हीं के साथ रह रहा है, संबंध तो छोड़ना चाहता है, तो उनके प्रति उनके कोई लगाव नहीं रहा है। बाह्य में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, क्योंकि ठगों से पढ़ना पड़ा है ना, तो जैसा निमित्त बनता है वैसे वहां रह रहा है, परंतु अंतरंग में बहुत उदासीन हो गया। पुनश्च कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है और किसी कारण से किसी ठग से अनुराग रूप प्रवर्तता है, किसी ठग से लड़कर उदासीन होकर आहार आदि का त्यागी होता है। क्या कहते हैं, जिसने यथार्थ में जाना कि मेरा कुल कोई और है और ये ठगों के साथ मेरा कुछ ऐसे ही, मैं जबरदस्ती यहाँ लाया गया हूँ, तो उनसे उदासीन होकर संबंध छुड़ाना चाहते हैं, फिर भी अभी उनके साथ रह रहा है। अब दूसरा कोई पुरुष ऐसा है कि वो ठगों को अपना मान रहा है, फिर भी कारणवश, जैसे हम घर के कुटुंब के कोई अन्य सदस्य के प्रति हमारी कोई बोलचाल हो जाए तो हम क्या करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, आज खाना भी नहीं खाऊंगा ऐसा भी कहते हैं, तो उनके प्रति उदासीन, ये क्या वो सच्ची उदासीनता है कि कषाय के वश उदासीन हुआ। हाँ, यही बात कह रहे हैं कि कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है, ये अपना तो जान रहा है, फिर भी किसी कारण से किसी के साथ अनुराग रूप यानी प्रीति पूर्वक रहता है और किसी ठग से लड़कर उदासीन होता है। झगड़े के कारण उदासीन होना अलग बात है और अंतरंग में से उनके प्रति ये मेरे है ही नहीं ऐसे होना, बात समझ में आना, वो उदासीनता अलग है, आहार आदि का त्यागी होता है। उस प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, अनादि से सर्वजीव संसार को प्राप्त है, वहां कर्मों को अपना मानते हैं। आप कहेंगे हमने कर्मों को कभी देखा ही नहीं, हम कहां अपना मानते हैं? हाँ, परंतु कर्मों के उदय में जो फल प्राप्त है उसकी कोई बात है, उसमें अपनापन है। शरीर मैं हूं कोई सिखाने पड़ते हैं बच्चे को भी, वो बच्चे की बात क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी है वो तो मैं उस रूप हूं, ऐसे उनकी मान्यता चल रही है, तो एक कर्मों को अपना मान रहे। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से जीव कहने अपना स्वयं का और कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से, देखो किसी निमित्त से यानी भगवान की वाणी से या वह वाणी किसी आचार्य ज्ञानी ने के द्वारा उन्होंने सुनी है, तो किसी निमित्त से, निमित्त भी यहां लिया, क्या समझ में आया उसको, अपना और कर्म का यथार्थ ज्ञान होने से, ये कर्म का क्या है उसका फल कैसे होता है और मेरा स्वरूप क्या है ऐसा यथार्थ ज्ञान हुआ, कर्मों से उदासीन हुआ, उनको पर जानकर, अभी कर्मों से तो जुदा हो ही नहीं सकता है, वो तो आर्यंत भगवान के भी कर्म बाकी है, तो पहले में पहले यथार्थ ज्ञान हुआ, अब उनसे उदासीन हुआ और उनको पर जान लिया, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है। बाह्य जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, क्यों, अभी तो कर्म से छूटा नहीं है तो सांसारिक कार्यों में भी वो करता हुआ दिखाई देता है, परंतु अंतरंग में उसके प्रति लगाव बिल्कुल है ही नहीं है। इस तरह जो ज्ञानाभ्यास से उदासीनता होती है वही कार्यकारी है, क्यों, ऐसी उदासीनता तो हमको जिसको स्मशान वैराग्य कहते हैं, थोड़े दिन के लिए, जैसे घर में किसी की बीवी मर जाए तो ऐसा उदासीन हो जाता है, अरे ये संसार तो असार है। हमने ऐसे देखे, हमारे पहचान वाले थे, तो बीवी मर गई बेचारी कैंसर से, बहुत सालों से बीमार थे। फिर बुलाए वहां पर और कहते हमको कोई दो शब्द बता दो, तो शास्त्र की बातें बताई। आहा कैसा है, आप इसकी पुस्तक छपवाने चाहिए, ये बहुत सैकड़ों पुस्तकें हैं, ये सारे देखो ये है पुस्तकें, जो प्राथमिक की भी बातें हैं। तभी हमारी कोई पुस्तकें बाहर नहीं आई थी, उस जमाने की बात है। बता बता स्टोरी।
तो इतना हो गया कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं इस शास्त्र छपाई में लगाना चाहता हूँ, मेरा अभी क्या रह गया इस दुनिया में। तो हमने कहा बहुत सारी किताबें हैं, वो पढ़ लो आप, तब आपको सारा ये हो जाएगा। तो ऐसे वैसे पहले के 10 दिन तो हम गए उनके घर रोज, उसके बाद अगले 10वें दिन में हमारे नाम पे एक पत्रिका आई,
मैंने बने
इनविटेशन कार्ड, तो उसमें दे लिखा था कि उस आदमी की जिसकी उम्र 50 के ऊपर की थी उस समय, शादी कर रहा है, तो ये उदासीनता कैसी रही स्मशान वैराग्य।
यानी ये सच्ची उदासीनता नहीं, ये बताने का प्रयोजन, किसी प्रसंगवश किसी से झगड़ा करता है, चलो मैंने बात नहीं करना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, ये उदासीनता नहीं है। हाँ, उसका राग छुटा नहीं है उसके प्रति। तो ज्ञानाभ्यास से जो उदासीनता आती है वही सच्ची उदासीनता है, ये बात बताना चाहते हैं। पुनश्च कोई जीव उन कर्मों को अपने जानता है और किसी कारण से किसी शुभ कर्म से अनुराग रूप प्रवर्तता है, शुभ कर्मों के फल में उसको बहुत मजा आती है, उसके प्रति उसको अनुराग होता है, और किसी अशुभ कर्म से दुख का कारण जानकर उदासीन हुआ। अभी आशाता का उदय चल रहा है, बहुत कुछ न कुछ उसके ऊपर संकट आ रहे हैं, तो उदासीन हुआ। विषयादि का त्यागी होता है, घर छोड़कर भी चला जाता है, दीक्षा भी अंगीकार करता है, परंतु ये सच्ची उदासीनता नहीं होगी। इस तरह ज्ञान बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दाता है। थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, परंतु ये मिथ्यात्व का बड़ा पाप तो चल रहा है हो। मोक्ष कार्य को नहीं साधती, यानी मोक्ष मार्ग में वो कुछ काम की नहीं है, वो उदासीनता मोक्ष कार्य को नहीं साधती, इसलिए उदासीनता में भी ज्ञानाभ्यासी प्रधान है। ये देखो ज्ञानाभ्यास किस किस में प्रधान है, व्रत में प्रधान है, तप में प्रधान है, दान में प्रधान है ना, ये भक्ति में प्रधान है। अब ये कहते हैं यहाँ उदासीनता में भी प्रधान है, यानी विषयों के त्याग में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञानाभ्यास ही प्रधान जानना, उन्होंने तो थोड़े शुभ कार्य गिनाए हैं, तो सभी शुभ कार्यों में ज्ञानाभ्यास के बिना वो शुभ कार्य कुछ अधिक फल नहीं देता। देखो महामुनियों के भी ध्यान अध्ययन दो ही कार्य मुख्य है, जितने मुनि हो गए ये जो सारे कुनकुंदाचार्य आदि, ध्यान और अध्ययन मुनियों के लिए, सामान्य साधु हो आचार्य हो या कोई अन्य भी हो, तो ध्यान और अध्ययन ये दो ही उनके मुख्य कार्य हैं। इसलिए शास्त्र अध्ययन से जीव कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान करना, यानी शास्त्र अध्ययन के द्वारा जीव का और कर्म का स्वरूप स्वरूप का ध्यान करना। पुनश्च यहाँ कोई तर्क करे कि, अभी सामने वाला और प्रश्न पूछ रहा है, कोई जीव शास्त्र अध्ययन तो बहुत करता है और विषय आदि का त्यागी नहीं होता, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग देखने में आते हैं, बहुत प्रकांड पंडित है, फिर भी विषयों का त्याग उनके जरा भी नहीं है, तो उसको शास्त्र अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? प्रश्न कैसे, ऐसा प्रश्न पूछना चाहते कि सामने वाले को कुछ पकड़ ले। यदि है, यानी यदि वो कार्यकारी है, तो महंत पुरुष क्यों विषय आदि का त्याग करते हैं? यानी विषय का त्याग किए बिना भी अगर ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है, तो जो बड़े बड़े पुरुष हो गए हैं, साधु हो गए हैं, उन्होंने विषयों का त्याग क्यों किया? मात्र ज्ञानाभ्यास ही करना था, ये प्रश्न चल रहा है। और यदि नहीं है, क्या कि उनके विषय का त्यागी नहीं है, इसलिए शास्त्र अध्ययन भी कार्यकारी नहीं है। यदि ऐसा कहते हो तो ज्ञानाभ्यास की महिमा कहाँ रही? तो बिना ज्ञानाभ्यास ही विषय का त्याग कर देते ना। समझ में आती बात? अब उसका समाधान, शास्त्राभ्यासी दो प्रकार के हैं। शास्त्राभ्यासी ने शास्त्र का अध्ययन करने वाले, सीखने वाले दो प्रकार के हैं, एक लोभार्थी एक धर्मार्थी। अर्थी ने उसके लिए करने वाला, जैसे विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो विद्या चाहता है, हासिल करना चाहता है वो विद्यार्थी। वैसे लोभार्थी ने लोभ के लिए कोई कार्य करे वो लोभार्थी। और एक है धर्मार्थी, धर्म बुद्धि से जो ज्ञानाभ्यास करे वो धर्मार्थी। वहां जो अंतरंग अनुराग के बिना, अनुराग यानी उसके प्रति रुचि प्रेम, तो जो अंतरंग अनुराग के बिना यानी शास्त्र के प्रति अंतरंग से तो कोई प्रीति या बहुमान नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ रहा है? तो अंतरंग के अनुराग के बिना ख्याति, ख्याति यानी प्रसिद्धि, लोक में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, पूजा यानी अन्य लोग मेरा विनय सत्कार करेंगे, लाभाधिक के लिए क्या लाभ मिलेगा, मैं कहीं प्रवचन करूंगा तो मुझे कोई मानधन मिलेगा, ऐसे भी चलती है प्रथा समाज में। अपने यहां मुमुक्षुओं में कोई नहीं लेता व्याख्यान के लिए, परंतु अन्यत्र हजारों रुपए मांग के भी लेते हैं। तो ख्याति पूजा लाभाधिक के लिए शास्त्राभ्यास करता है वह लोभार्थी है, वह विषयाधिक का त्याग नहीं करता। जो लोभ के लिए ही शास्त्राभ्यास कर रहा है उसके तो विषय का त्याग नहीं होता है। अथवा ख्याति पूजा लाभाधिक के लिए विषयाधिक का त्याग भी करता है। क्या कहना चाहते हैं? विषय का त्याग भी क्यों करता है? वो भी इसके लिए करता है कि लोग मुझे पूजने लग जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए, मेरे शिष्य बढ़ जाएंगे, इसलिए वो उसने विषयों का त्याग भी किया है। उसके पीछे उसके कषाय है वहां पर, वो उसका सच्चा त्याग भी नहीं है, तो भी उसका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है। यानी शास्त्र का अभ्यास करके भी यदि ख्याति लाभ पूजा आदि चाहता है तो उसका लोभार्थी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। तथा जो अंतरंग अनुराग से ऊपर लिया था अनुराग के बिना, किसके लिए करता है? फिर आत्महित के लिए शास्त्राभ्यास करता है। ये शास्त्राभ्यास का प्रयोजनतर यही होना चाहिए हर एक जीव के लिए कि वो अपना कल्याण चाहता है, इसलिए वो शास्त्राभ्यास करता है। और सहज ऐसे उसके फिर भाव बन जाते कि मैं औरों को भी पढ़ाऊं, परंतु ये पढ़ाना उसका मूल प्रयोजन या मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकता। प्रयोजन तो एकमात्र है वो आत्महित का है, जिसको कहते हैं स्वांत सुखाय, जिसको कहते हैं अपने अपने सुख के, अपने हित के लिए। तो जो अंतरंग अनुराग से आत्महित के लिए शास्त्राभ्यास करता है वह धर्मार्थी है। प्रथम तो जैन शास्त्र ऐसे है कि जिनका धर्मार्थी होकर जो अभ्यास करता है वह विषयाधिक का त्याग करता ही है, क्योंकि अपने आत्मा के हित की बात उसमें पता चलती है, उसको धर्म का अर्थी है, तो उसके विषयों के प्रति लगाव छूट ही जाता है। तो त्याग करता ही नहीं, वो बाह्य की ओर दृष्टि मत है, उसके उनके प्रति जो पहले लगाव था, जो रुचि थी, अब वो रुचि नहीं रहती।
देखो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने जैसी है, ये जो हम बार बार कहते आए हैं और समझना भी चाहते हैं कि जब हम शास्त्राभ्यास करते हैं तो यह बात मेरे लिए कही गई है, तो ये कब जीव मानेगा? तो कहते हैं अंतरंग अनुराग होगा तो, यानी क्या कि अपना स्वरूप मेरा क्या है ये समझने की जिसे इच्छा जागृत हुई है, और वह स्वरूप किस लिए जानना है कि उसमें लीनता करके मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी है, तो कहते उस जीव के अंतरंग अनुराग होगा। और वो किस लिए कह रहे हैं? तो आत्महित के लिए। तो किसके? आत्मा के हित के लिए, जो बताता है उसको सुने तो उसका हित हो जावे, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ख्याल में है ना, हम जो कोई पढ़ते हैं शास्त्र वो छात्र लिखने वाले पर मेहरबानी करने के लिए, क्योंकि आत्महित के लिए। और वो कहते कि ऐसा जो अंतरंग अनुराग से शास्त्राभ्यास करता है वह धर्मार्थी है। धर्मार्थी किसको कहना है इसकी बात बताए। अब आगे क्या बात बताते हैं कि धर्मार्थी होकर जो अभ्यास करता है वह विषयादिक का त्याग करता ही है। अब विषयादिक में क्या आ गया, ये पंचेंद्रिय के विषय तक हम सीमित रखेंगे तो अभी हम अपने तरफ देखें और सोचें कि अगर हम यहाँ एक घंटा दो घंटा जो रात को शाम को स्वाध्याय करते हैं, वो अगर हम स्वाध्याय नहीं करते तो क्या होता, वो जो कुछ समय हमारा था उसको कहाँ यूटिलाइज करते हम, कहीं घूमने जाते, कहीं मेहमानों की तरफदारी करते, कहीं टीवी देखते या कहीं पिक्चर में जाके बैठते। ख्याल में सुबह का टाइम हो तो छापू आप वाद क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते। यानी कहने का मतलब ये है कि हम विषयादिक में कहीं खाना खाने बैठे, कुछ भी चटर पटर जो बातें चलती है, यहाँ यही कह रहे हैं कि जब इस जीव को आत्मार्थी होकर यानी आत्महित के लिए शास्त्राभ्यास करेगा तो बाह्य विषयादिक का त्याग होता ही है, करना नहीं पड़ता है। अब जो हो गया तो कहेंगे कि इसने उसका त्याग किया। जैसे हमारे अरविंद भाई बैठे हैं, पहले रोज शाम को 6 से 7 या 8 जो भी टाइम होगा उनका तो लीधा दीधा में चलता था, नहीं समझे लीधा दीधा, पूछो उनसे। हाँ तो गए नहीं तो उस लोग पूछने लगे, भाई कहाँ गए, कहाँ जाते हो तुम, क्या करते हो, कितने दिन जाएंगे। दूसरे बोलते अरे 2-4 दिन के लिए नाटक है, फिर देखो लाइन में आ जाएगा। तो अभी वो आज 16 साल से आ रहे हैं रोज। तो ये सब बातें छूट गई, धंधा छूटा नहीं, वो तो फायदा हो गया उस समय, नहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया की तरह नहीं है, उसी में फायदा हो गया। कहना ये चाहते कि ये बातें सहज छूट जाती है। देखो हम दूसरी तरफ से देखते हैं, जब हमें शास्त्र का अभ्यास नहीं था, वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं थी, जीव कहाँ कहाँ रहते हैं होते हैं इसका पता नहीं था, तो हम अनाप शनाप कुछ भी खाते थे, दिन हो रात हो, भक्ष्य हो अभक्ष्य हो, उसका सेवन चलता ही था। लेकिन अभी तो हम दिन में ही खाएंगे, रात का भोजन नहीं करेंगे, यहाँ तक तो पहुँच गए, कंदमूल आदि अभक्ष्य वस्तुएं छोड़ देंगे, बाकी ऊपर की वस्तु की तो बात ही नहीं करता हूँ मैं, मध्य मांस और मधु, ख्याल में है ना। ये तो सहज छूट जाता है यथार्थतया ध्यान होने से, ये मूल बात है। तो कहते हैं जिनका धर्मार्थ होकर जो अभ्यास करता है वह विषयादिक का त्याग करता ही है, करता ही यानी वो सहज छूट जाता है। तो यहाँ जोर जबरदस्ती मतलब कंफर्म करने के लिए देख करता ही है ऐसा कहा।
यानी ये ऊपर के गुणस्थानों की बात यहाँ पहले ली है, मुनि योग्य विषयादिक का त्याग उनके वो करता ही ऐसे पहले बात की। अब आगे और भी कहते हैं, उसके तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही, परंतु कदाचित पूर्व कर्म के उदय की प्रबलता से, यानी अभी ये जो गृह त्याग आदि जो है आगे के गुणस्थानों की जो बात है उतना उनसे नहीं होता है, तो उसमें निमित्त रूप से पूर्व कर्म के उदय को लिया है। जैसे चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती के पद में कितना काल तक रहा है ना, यहाँ आदिनाथ का समोसरण लगा है और वहां उनकी पूजा करके निकले, कहा षटखंड का आधिपत्य करने निकले, 60,000 वर्ष तक घूमे, तो यहाँ तो भगवान का समोसरण छोड़ दिया और वहां घूम, यानी वो तो षटखंड जीतने के लिए निकले। तो यहाँ लिखा है पूर्व कर्म के उदय से, जैसे आदिनाथ की भी बात है, 84 लाख पूर्व की आयु थी और 83 लाख पूर्व तक तो गृहस्थ दशा में रहे, तो यहाँ विषयादिक का त्याग नहीं हो सका, तो वहां निमित्त रूप से पूर्व कर्म के उदय को ले लिया है। वैसे हम जानते हैं कि वो जो चारित्र गुण की पर्याय वो उसके अपने कारण होती है, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, हर एक का अपना अपना कार्य स्वतंत्र है, उपादान से नहीं, यहाँ निमित्त की बात ले रहे। तो पूर्व कर्म के उदय की प्रबलता से न्याय रूप विषयों का त्याग न बन सके। अन्याय रूप विषय तो उनके सेवन होता ही नहीं है, समय दृष्टि जीव के समय दर्शन होने के पूर्व से ही अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण और कुदेवादि का त्याग तो होता ही है, उसके बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ कहते न्याय रूप विषयों का त्याग नहीं है, न्याय रूप विषयों का सेवन चलता है, यानी न्याय से और नीति से जो होगा वो कर रहे, परंतु अन्याय पूर्वक किसी चीज का वहां विषयों के पीछे नहीं दौड़ रहे। तो भी और ऐसा ही कि नहीं कि उसको अच्छा नहीं मान रहे, ये करने जैसा ऐसा नहीं मान्यता उनकी, मान्यता तो सही है कि अरे रे मैं कहां अटका हूं ये इन विषयों में, फिर भी अभी नहीं छूट रहे हैं। तो कहते हैं तो भी यानी वो उनका विषयों का त्याग नहीं हुआ है, फिर भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने से ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है, यानी विषयों का त्याग नहीं भी हुआ है फिर भी उनके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है, इसलिए ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है। जैसे असंयत गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग पना होता है, यानी मोक्ष मार्ग तो शुरू हुआ है अभी विषयों का त्याग नहीं हुआ है, तो इसलिए ज्ञानाभ्यास के कारण उनके प्रति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। यहाँ प्रश्न, जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसके विषयादि का त्याग न हो ऐसा तो बन नहीं सकता, ये शंकाकार की शंका है। ज्ञानाभ्यास कर दिया इतनी समझ में आती है और फिर भी त्याग नहीं करता है, ऐसा प्रश्न औरों को उठ सकता है। क्योंकि जब हमने भी जब 75 में जब पहले यात्रा में गए थे और लोगों को पता चला कि ये बहुत स्वाध्याय में रुचि रखने वाले, तो दीक्षा कब लेंगे, पहला प्रश्न क्या था उनका, दीक्षा कब लेने वाले हो। उनको ऐसा ही लगता है कि जिसने स्वाध्याय किया तो तुरंत दीक्षा ही लेकर लीजिए या होना ही चाहिए। यहाँ अपने यहाँ आने वाले एक भाई थे, उनके घर वालों को भी ऐसा लग रहा है ये अभी आदमी दीक्षा लेकर छोड़ जाएगा अपने को, तो उनको जबरदस्ती से घर बिठाया कि आप स्वाध्याय छोड़ते हो क्या, वो अमेरिका वाले पुत्रों को बुला लो वापस, वो आ जाएंगे पिताजी को समझाने के लिए। क्या समझाएंगे, स्वाध्याय मत करो। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है धर्मार्थी होकर और विषय का त्याग न हो ऐसा कैसे बन सकता है, तो ऐसा बन नहीं सकता कहते, क्योंकि विषयादि का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन है। कहाँ भूल हो रही है इसकी, परिणाम जो है राग जो है वो स्वाधीन है मानता है, मेरे करने से होता है, और ये धर्मार्थी होकर शास्त्राभ्यास कर रहा है और इतना त्याग नहीं कर सकता, ये इसका प्रश्न है। वहां समाधान, परिणाम ही दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक एक अबुद्धिपूर्वक। हम जिसको बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कहते हैं वो उसकी बात नहीं है, ये यहाँ अलग अपेक्षा है। हम हमेशा जो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की बात करते हैं तो जो अपने ज्ञान में ख्याल में आवे वो बुद्धिपूर्वक, और जो होते हैं परंतु अपने ख्याल में नहीं आते केवल ही भगवान जाते वो अबुद्धिपूर्वक, वो बात यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो वहाँ अपने अभिप्राय के अनुसार हो वो बुद्धिपूर्वक, जैसे हम अभी अभिप्राय पूर्वक यहाँ स्वाध्याय में बैठे हैं ये बुद्धिपूर्वक हुआ, और दैव यानी कर्म के निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा हो वे अबुद्धिपूर्वक, जिसको हम सोच समझ कर वो कहेंगे वो बुद्धिपूर्वक, यहाँ के लिए अर्थ ऐसा ही लिया, और जो हम चाहते नहीं है फिर भी आ जाते हैं स्वाध्याय में या भक्ति में बैठे हैं और कोई अन्य घर का विचार आ जाता है, दुकान का विचार आ जाता है, बच्चों का विचार आ जाता है, तो वो क्या है, अबुद्धिपूर्वक। जिस प्रकार अभी यहाँ दृष्टांत से समझाते हैं, सामायिक करते हुए धर्मात्मा का अभिप्राय ऐसा है कि मैं मेरे परिणाम शुभ रूप रखूं, इतने काल की मर्यादा लेकर अन्य सभी विषय कषायों का त्याग करके वो चाहता है कि मैं शुभ भाव में रहूं, वहाँ जो शुभ परिणाम ही हो वे तो बुद्धिपूर्वक और कर्मोदय से स्वयमेव अशुभ परिणाम हो वे अबुद्धिपूर्वक। वैसे तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा हम कहेंगे ये सारे जो होने योग्य होते हैं, यानी वो सोच समझकर पलटाना ये उसका स्वभाव में ही नहीं है, ये उसकी बात उसके हाथ की बात नहीं है। फिर भी यहाँ जो जिस अपेक्षा से बताया है उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो ये क्या बताए, बुद्धिपूर्वक अभी अबुद्धिपूर्वक, जो स्वयं में वो कोई अशुभ हो जाता है तो अबुद्धिपूर्वक। उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषयादि के त्याग रूप वीतराग भाव का ही होता है, क्योंकि वो धर्मार्थी है ना, धर्म है ना, यहाँ तो वीतरागता, वीतरागता का इच्छुक है, मोक्ष चाहता है और ज्ञानाभ्यास करता है तो मेरे विषयादि का त्याग हो जाए ऐसे तो उसकी इच्छा है वहां पर। यानी अभिप्राय क्या है उसका कि विषयों का त्याग होकर मैं पूर्ण वीतरागी हो जाऊं। वहां जो वीतराग भाव हुआ तो वह बुद्धिपूर्वक है और चारित्र मोह के उदय से सराग भाव हो जाए तो वह अबुद्धिपूर्वक है। इसलिए बिना वश यानी अपने वश में नहीं है, जो सराग भाव होते हैं उनसे उसके विषयादि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी उसके अभिप्राय में विषयादि को अच्छा नहीं मान रहा है फिर भी प्रवृत्ति आचरण में वो अभी नहीं छूट रहे। हाँ, आपका कहना है चौथे गुणस्थान के बाद जो कोई शुभाशुभ भाव होते, कर्तापने की बात नहीं ली है, नहीं हो जाता है वो तो सबके ही हो जाते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। वो भी जीव पांचवे गुणस्थान वाला भी अभी वो बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठता है दिन में तीन टाइम, वो उसका बुद्धिपूर्वक है, और उस काल में भी कोई अन्य विचार आ जाए वो अबुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक उसके भी हो गए, अभी यात्रा में निकला है तो बुद्धिपूर्वक उसका अभिप्राय क्या है, वो शुभ में रहे, और यात्रा करते करते कहीं किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए तो क्या करना चाहता है, या कोई अन्य वश, तो इसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। या कोई मन में विचार आ जाए उसकी बात यहाँ अबुद्धिपूर्वक में ले ली। क्या कहते हैं, उसके विषयादि की प्रवृत्ति दिखाई देती है क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। हाँ, अभिप्राय में तो उसके वीतरागता है। हाँ, धर्मार्थी की बात है। यहाँ भूल की बात नहीं है, प्रवृत्ति की बात है। देखो देखो उसका अभिप्राय क्या है, वीतरागता की प्राप्ति हो जाए, तो इसलिए वो बुद्धिपूर्वक क्या कर रहा है, तो अभी तो भगवान की भक्ति में बैठा है, भगवान की भक्ति में बैठा है वो, उसने बुद्धिपूर्वक बैठा है वो। उसका अभिप्राय क्या है, भगवान की पूजा करना है। अभी हम पूजा के लिए देखते, अभी अभी उसका अभिप्राय है शुभ, शुभ का अभिप्राय है और वो पूजा में बैठा है, फिर भी बीच में कोई एकाध विचार भी आ जाए तो वो क्या हुआ उसका। कर्म के उदय नहीं है, चारित्र मोह के उदय की बात है। हाँ, चारित्र मोह के उदय की बात है, अन्य में भी सभी में प्रवृत्ति में ले लेना है इसे। यहाँ कर्ता भाव की बात नहीं है, कर्ता भाव तो उसके है ही नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं मगर करने का राग आता है, कर्ता बुद्धि ने मिथ्या अभिप्राय, और करने का भाव आना वो तो चारित्र मुह का है, अस्थिरता वश।
देखो जैसे अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा अभिप्राय स्वाध्याय करने का ही है, जिसको यहाँ हम फॉर द टाइम बिंग शुभ भाव कहेंगे, लेकिन अरे मेरे घर में कोई मेहमान आए हैं और मुझे जाना है, ये परिणाम आ जावे तो क्या होता है, ये तुम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं कि कभी 7:15 बजते और कभी मेरे को जाने का है। हमें तो 1 घंटा पूरा यहाँ स्वाध्याय करना ही है, फिर भी ये भाव आते हैं तो समझ लेना कि वह अबुद्धि पूर्वक वो जानने में आ रहे हो।
हाँ, यहाँ दोनों, यहाँ यहाँ की अपेक्षा ही अलग है।
हाँ,
बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों अपने ज्ञान में आ रहे हैं। जिसको हम जानी जोई ने कहते ना, हाँ, वो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा।
हाँ, मतलब यहाँ पर
और
वो
बिना अभिप्राय के आता है उसको अभिप्राय ये अबुद्धिपूर्वक कहेंगे।
जो हमने अभी तक देखा था कि जो राग अपने में आ रहा है और उसको हम जान ही नहीं रहे, केवल जानते हैं, उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। लेकिन वो बात यहाँ नहीं है, ऐसा उज्ज्वला ने पहले ही बताया। यहाँ तो हमने जो सोचा था और फिर भी कोई अलग बात बन रही है, उसको अबुद्धिपूर्वक का राग कहने में आता है। ये बात आप ध्यान में लेना। अब वहाँ वो करता है क्या नहीं करता है, वो बात यहाँ नहीं है। जो सोच के आया उससे कोई विरुद्ध बात हो रही है। हाँ, यहाँ
दोनों ही जानने में आ रहे हैं, परंतु वो राग है ना, वो परिणाम है। तो बाह्य प्रवृत्ति परिणाम के अनुसार लिखा, देखो, बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है और जो धर्मार्थी है उसके अभिप्राय में है वीतरागता प्राप्त करना। अभिप्राय अलग बात है और परिणाम अलग बात है। अभिप्राय ने मान्यता उसकी अलग है और परिणाम में वो तो चारित्र गुण की बात ले रहा हूं। तो यहाँ कहते हैं बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। अब इस पर फिर तर्क उठाता है शंका का, यदि ऐसा है तो हम भी विषयाधिक का सेवन करेंगे। इसको छूट मिल गई ना, हम भी विषयाधिक का सेवन करेंगे और कहेंगे कि हमारे उदयाधीन कार्य हो रहे हैं, हमारी तो मान्यता नहीं है, क्या करें। उदयाधीन कर्म के उदय के कारण, कर्मोदय से हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। हम तो नहीं चाहते, हम तो टीवी देखना नहीं चाहते, पर क्या करें, हमारा कर्म का उदय है। हम तो स्वाध्याय में आना चाहते, पर क्या करें, हमारे कर्म का उदय है। वो तो सबको अंतराय कर्म बराबर आड़ा आता है सबके लिए। तो उसको कहते हैं, ये आगे का बहुत अच्छा है, पदवी भी है, रे मूर्ख, कुछ कहने से तो होता नहीं। यानी इसका अभिप्राय में पड़ा है विषयों का सेवन करूं, और सामने वाले को शास्त्र की भाषा में समझाना चाहता है कि मैं कर्म के उदय के अधीन क्या करें। हम ख्याल में आए ना, क्योंकि उसने ऊपर सुना है कि विषय आदि की प्रवृत्ति हो रही, पर हम अभिप्राय से तो कुछ नहीं होता चौथे गुणस्थान वाले का। तो ये भी कहता, हम भी विषय सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे कर्म के उदय के कारण हो रहा है। उसके लिए कहते हैं, मूर्ख, कुछ कहने से तो होता नहीं, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार है। इसलिए जैन शास्त्र के अभ्यास से अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना, क्योंकि पहले ज्ञानाभ्यास होता है फिर सम्यक दर्शन होता है, तो अभिप्राय ठीक हो जाता है। और अंतरंग में विषयादि के सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता, वो तो विषयार्थी हो ना, क्योंकि अभिप्राय क्या है उसका, विषय का सेवन करना। और बाहर महंत तो होना चाहता है, सबको बताता है क्या करे, हम तो नहीं चाहते, परंतु ये कर्मों के उदय के कारण हो रहा है। इस तरह चरणानुयोग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। जो चरणानुयोग का पक्षपाती है, व्रत करो तप करो ऐसा कहने वाला, इससे क्या होगा, उसको भी बता दिया कि ज्ञानाभ्यास ही मुख्य है और इसलिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होड़ो।